प्रेस गोरखपुर के हनुमान प्रसाद पोद्दार ने प्रभुपाद जी को निमंत्रण दिया था और प्रभुपाद कुछ अपने भक्तों के संग वहाँ रुके हुए थे वाटिका में। पोद्दार जी की बहुत सुंदर वाटिका है गोरखपुर। तो भक्त ऐसे कुछ जा रहे थे बाहर से सीखाला था शायद कृष्ण वासुदेव आए कुछ ऐसे कोई एक गा रहे थे। तो प्रभुपाद ने कहा मैं आओ आपको एक नया भजन सिखाता हूँ। He called them and said, I'm teaching you one new. And then he started singing Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Aur sab ne usko suna. Aur us din ke baad ye bhajan katha aur satsang karne se pehle Prabhupada ji ne ek routine bana liya. Udesh kya hai iska? What is the purpose of singing this bhajan? Is bhajan mein teen cheeze hain jo Vrindavan mein aaj bhi wahi ki wahi hain jahan us waqt thi jab Bhagwan Sri Krishna the. नहीं तो आप आज जाएंगे वृंदावन में तो पंडे आपको कहेंगे भगवान ने यहाँ ये लीला की यहाँ ये लीला की और 100 जगहें बताएंगे उसी एक लीला की। तो कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन कोई भी आपको आज पंडा नहीं कहेगा गोवर्धन पहले यहाँ था तो अभी भी वहीं पड़ा है गोवर्धन इज देयर। कोई नहीं कहेगा जमुना पहले यहाँ थी जमुना यही है सामने पड़ी है। तो इस भजन के अंदर वृंदावन के ऊपर मेडिटेशन है। उद्देश्य क्या है कि हमारा दिल वृंदावन बन जाए दिल में वृंदावन का चिंतन आ जाए। तो कथा सुनेंगे तो कथा में कृष्ण कथा है और कृष्ण वृंदावन में रहना चाहते हैं तो आपके दिल में आके रहेंगे। पर्पज ये है राधा माधव वृंदावन में क्या है राधा माधव नित्य निवास करते हैं। कहाँ रहते हैं कौन से महल में रहते हैं बोला कुंज बिहारी कुंजों में विहार करते हैं। आहार विहार से ये भगवदगीता में एक श्लोक है ना विहार मीन्स एक्सकर्शन रिक्रिएशन के लिए बाहर घूमने जाना उसको विहार बोलते हैं। तो कहाँ करते हैं राधा माधव विहार बोला कुंजन में विहार करते हैं। कुंज किसको बोलते हैं वृंदावन के वृक्ष जो है ना द ट्रीज ऑफ द वृंदावन दे नेवर गो अप स्ट्रेट लाइक दिस सीधा जाना ये तो अहंकार है ऐसे खड़ा होना। वो बहुत निम्र है ऊपर जाते हैं तो भगवान के चरणों के चिन्ह जो धरती है उससे दूर हो रहे हैं। दे आर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम द फुटप्रिंट्स ऑफ लोटस फीट ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण दे टर्न डाउन ये घूम के नीचे आ जाते हैं। और जब नीचे आती हैं तो उसके अंदर छोटा कमरा बन जाता है ब्यूटीफुल एक कमरा बनता है। फिर 5-7 ऐसे अगर पेड़ होते हैं जैसे ग्रुप ऑफ ट्रीज लाइक दिस देन कुंज के अंदर कुंज के अंदर कुंज निकुंज और उसके अंदर फिर वो वन देवी और वृंदा देवी कारपेट बिछाती है फूलों का फूलों के कारपेट फूलों से सजाया जाएगा। कुछ आए चारों ओर से ठंडी ठंडी हवा अपने आप आएगी। ये उनके रहने की जगह है कौन सी कुंज विहार राधा माधव कुंज बिहारी। क्या करते कुंजन में गोपीजन वल्लभ वल्लभ का मतलब प्रेम करने वाला। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं भगवान गोपियों से प्रेम करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है गोपियों से भगवान क्यों प्रेम करते हैं भाई सबसे करना चाहिए ना। और वैसे माता जी लोग जल्दी भक्त बन जाती हैं प्रायः तो प्रचार में भी उसका कारण क्या है और कोई भी कारण हो लेकिन थोड़ी देर आप इसका एक तो आनंद ले लीजिए एक रस का। हरे कृष्ण। एक आदमी बेचारा गांव में रहता था 2-4-5 साल से दुखी था धंधा चल नहीं रहा था पत्नी बीमार थी बेटा स्कूल में पढ़ता नहीं था 3 परेशानियाँ थी। परेशानी में आदमी बाल भी नहीं बनाता दाढ़ी भी बढ़ गई दुखी होके गया पंडित जी के पास बोला पंडित जी जरा देखो तो मेरा हॉरोस्कोप देखो मेरी पत्नी बीमार रहती है। पंडित जी ने ऐसे किया और ये तेरी पत्नी के ऊपर तो शनिवार है बहुत दोष शनि का है फिर क्या करूं बोला शनि का व्रत करो ये थोड़ा सा लोहे का दाम दे दो तेल चढ़ा दो शनि के ऊपर। अच्छा महाराज ठीक हो जाएगा हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो थोड़ी देर के बोला मेरा बेटा स्कूल नहीं जाता बोला सूर्य ठीक नहीं है उसका बहुत कमजोर है बुद्ध उसका बुद्धि खराब है क्या करूँ बोला ये हो इसका भी कर लेना उपचार। बोला मेरा धंधा नहीं चलता है राहु है ये बेचारा गाँव था बड़ा ऐसे आश्चर्य बोला महाराज जी आपको पता कैसे लगता है सब। पंडित जी बड़ा बुद्धिमान था बोला अब इसको मैं बोलूंगा कि ज्योतिष है तो ये समझ में नहीं आएगा। पंडित जी ने अपनी शिखा खोली बोला ये मेरा एरियल एंटीना और सब ऊपर से समाचार आता है अब वो जो बेचारा था उसने ऐसे अपने बाल खोले, वो 3.5 फुट उसका लंबा था, उसने बोला मेरा एंटीना है मुझे पता क्यों नहीं लगता। पंडित बहुत होशियार था, उसने दाढ़ी को पकड़ा, बोला यहां से सारी अर्थिंग हो जाती है। तो बाय दी वे माता जी को अर्थिंग है नहीं। और चोटी सबकी बड़ी है, इसलिए चोटी बड़ी है अर्थिंग है नहीं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा चोटी बड़ी रखो, अर्थिंग नहीं रखो तो आपका भी काम हो जाएगा। हरे कृष्णा। तो इसलिए भक्त चोटी बहुत अच्छी रखते हैं, लंबी चोटी, और क्लीन शेव रोज सुबह सुबह कर लेते हैं कि अर्थिंग कम हो। तो गोपी जन वल्लभ गिरिवर, तो बोला केवल प्रेम ही करता है? बोलो नहीं नहीं, प्रेम केवल नहीं करता है, अपने प्रेमियों के ऊपर संकट आ जाता है तो पहाड़ उठा लेता। गिरिवर धारी भक्तों से प्रेम करता है तो भक्तों का दुख भी दूर करता है। नाम क्या है भगवान का? हरि। महाप्रभु कहते हैं हरि नाम के बहुत अर्थ हैं, लेकिन दो मुख्य अर्थ हैं। दो मुख्य अर्थ क्या है हरि के? भक्तों का दुख दूर करे, दुख हर लेता है, दुख ताप संताप हरे इति हरि, और प्रेम दे के मन हरे, और इतना प्रेम देता है मन ही हरण कर लेता है, इसलिए उसका नाम हरि है। तो जब भक्तों के ऊपर दुख ताप संताप संकट आता है तो भगवान पहाड़ उठा लेते हैं। गोवर्धन धारी, गोवर्धन को धारण कर लिया। इस दुनिया में बहुत से लोग कहते हैं आपके ऊपर कष्ट आएगा तो हम पहाड़ उठा लेंगे, आज तक किसी ने नहीं उठाया। किसी ने पहाड़ उठाया आज तक? सुना है कभी? नहीं होना। अरे भगवान ने पहाड़ उठाया ये तो अभी तक भी दिखता है ना, और वह पहाड़ अभी तक वहां पड़ा है, सब कहते हैं यही पहाड़ उठाया था, अभी तक वहां पड़ा है। गोवर्धन धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। वो जशोदा का लाल जो है वो ब्रजवासियों को आनंद देता है। रंजन का मतलब ये जो गाते हैं उसको बोलते हैं मनोरंजन। रंजन का मतलब प्लेयर, आनंद देता है। किसको आनंद देता है? ब्रज जन, जो ब्रज के जन हैं, जो ब्रज के जन हैं या जो ब्रजराज के जन हैं। ब्रजराज मतलब भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं वो भी ब्रज जन हैं। तो ब्रज में रहने वाले अथवा ब्रजराज के जो सेवक हैं उनको वो आनंद देता है। बोला कहाँ देता है, बोला कहाँ होता है? बोला जमुना तीर बनचारी, जमुना के दोनों किनारों के ऊपर 12 वनों में घूमता रहता है। भगवान के किसी भी मंदिर में भगवान को बैठा हुआ देखा है? खड़ा हुआ होता है। क्यों खड़ा होता है? पता नहीं किसी को भगवान, कोई भक्त परेशानी से आए, उठने में टाइम लग जाए, रेडी पहले से तैयार खड़ा है। और ये सच्ची बात, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, भगवान को बुलाने वाला भक्त बुलाता है, उससे पहले भगवान आ जाता है। गो कहा था केवल गजेंद्र ने, गो कहा था विंद पूरा किया, उससे पहले भगवान आया और ग्रहा का गर्दन भी काट दिया, और वो जो गज था वो मुक्त भी हो गया। तो विंद कहने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। कहते चतुर कुमार जब बाहर जाके खड़े थे वैकुंठ के, और जय और विजय वैकुंठ के दरवाजे के ऊपर खड़े थे, उनको नंगा देखा, छोटे बच्चे देखा, बोला कहां जा रहे हो? बोला हमारे बाबा ने बोला है वैकुंठनाथ से बात करनी है। तुम्हारा बाबा इतने छोटे घूम रहे, तुम्हारे बाबा कौन है? वो समझे नहीं, समझे नहीं, डंडा दे दिया आड़ा। दे पुट देयर क्लब्स टू ऑब्स्टक द वे ऑफ द फोर कुमारस। भगवान के घर में जाने के लिए रास्ता बंद करते हो तो आप लोगों को तो वृत्ति ऐसी लगता है कि यू लुक लाइक डीमंस। ऐसे अच्छा है कि आप जाके मन असुर बन जाओ। वैकुंठ नाथ ऊपर बैठे थे अंदर, लक्ष्मी जी गरुड़ जी, भगवान वहां से एकदम दौड़े। गरुड़ को अभी नहीं कहा कि तुम मेरे साथ चलो, तो गरुड़ पीछे आ रहा है, लक्ष्मी आ रही, भाग रहे, हुआ क्या, जा कहां रहे हैं? गेट के ऊपर आ गए एकदम। गेट पे आते ही कहा ब्राह्मणों, मेरे पार्षदों ने आपका अपराध किया है। भृत्य, भृत्य मीन्स सर्वेंट, भृत्य का अपराध मालिक का अपराध माना जाएगा। दी एनी ऑफेंस आर दी सिन कमिटेड बाय सर्वेंट is the responsibility of master. ये रामायण में बहुत एक अच्छा सुंदर आता है प्रसंग. विभीषण जी आते हैं हर रोज कहाँ, श्रीरंगम में. ये श्रीरंगम में जो भगवान रंगनाथ सोए हुए हैं ना, एक भक्त के भाव सुना दूं आपको. एक भक्त ने कहा कि जब भगवान को आराम करना होता है तब श्रीरंगम में जाके सो जाते हैं प्रेम से. और बोला जब भूख लगती है तो बोला जगन्नाथपुरी जाते हैं 56 भोग खाने के लिए. बोला खेलने का बंद करे तो वृंदावन में आते हैं खेलते हैं. बोला कुछ पैसा कमाना, बोला तिरुपति जाते हैं. तो रंगनाथ में जो बड़े भगवान श्री रंग भगवान सोए हुए, ये विभीषण इनको ले जा रहे थे, वहां रुक गए. तो अभी विभीषण आते हैं. तो जल्दी में एक दिन विभीषण जा रहे थे, उनके पांव के नीचे कोई ब्राह्मण दब गया. अभी विभीषण को छोटा तो है नहीं, रावण का भाई है. तो बहुत बड़ा विशाल उसकी काया है, उसका पांव किसी के ऊपर आया तो उन्होंने बंदी बना के रख दिया. भगवान राम को ये मालूम हुआ अयोध्या में. भगवान राम उसी वक्त भरत को कहा, आप राज शासन संभालिए, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ श्रीरंग क्षेत्र में. भगवान ने उस वक्त आवाहन किया किसका, पुष्पक विमान का. पुष्पक विमान का नाम सुना है, किसका था, रावण का नहीं था, कुबेर का था. कुबेर रावण का भाई है, माँ दूसरी है, पिता एक है. और कुबेर एक बार उसी विमान के ऊपर चढ़ने मिलने आया अपने पिता से, और रावण की माँ ने देखा, बोला मेरे बेटे के पास चढ़ने के लिए गधा भी नहीं है और ये विमान पे चढ़ गया. तब तो रावण के पास कुछ नहीं, उसका नाम तब दशग्रीव था, टेन हेडेड रावण. तो तब हुआ जब वो भगवान शंकर ऊपर पार्वती के साथ बैठे थे, ये बैठ के वो हिलाने लगा पूरे हिमालय को. भगवान बोला ये कौन मूर्ख आ गया जो हमारे सुख को बिगाड़ रहा है. भगवान ने थोड़ा जोर दिया और जो हाथ उसका नीचे आया रावण का, उसके नीचे दब गया ऐसा, और रोने लगा रोने लगा. तो उसका नाम हो गया रावण, दब गया हाथ बहुत ज्यादा उसके नीचे. तो ये भगवान राम एकदम पुष्पक विमान. फिर वो रावण ने कहा कि रावण ने जाके कुबेर को कहा, चलो यहां से राजधानी खाली करो. तो उस पिताजी को बोला मैं क्या करूं, बोला इस वक्त इससे तुम झगड़ा मत करो, इसको जाने दो, तुम दे दो और जगह चले जाओ. तो फिर वहां से वो चले गए और जगह पे कुबेर जी. तो जब जा रहे थे अपने पुष्पक में चढ़े, तो रावण ने बोला ठहरो, ये यहां छोड़ो, पैदल जाओ. वो जबरदस्ती उससे लेके रख दिया था. रावण के जाने के बाद विभीषण को मिला, विभीषण ने भगवान राम को भेंट दे दी. तो भगवान राम ने जब कह दिया, जब राज भेंट, तो बोलता हूँ अभी जाओ, जब मुझे जरूरत होगी तो आपको बुला लूंगा. आह्वान किया, विमान आया, चढ़ के श्रीरंगम क्षेत्र पहुंचे. सब ब्राह्मण ने कहा आप आ गए अयोध्या नाथ, ये बहुत बड़ा एक राक्षस है, हमारे एक ब्राह्मण का हत्या किया है, इसको दंड देना चाहिए. बाहर निकाल के लाए. भगवान राम कहने लगे इसका दंड मुझे देना चाहिए, क्योंकि ये मेरा दास है. दंड तो देना चाहिए जरूर, लेकिन मेरे को देना चाहिए, क्योंकि ये तो मेरे चरण में आ चुका है पहले. और मैं फिर रामचंद्र ने एक वचन कहा है उस वक्त, उससे पहले कहा था फिर दोबारा दोहराया है, कि एक बार भी सुकृत, सुकृत मतलब एक बार याचति, अगर ये याचना करता है मांगता है, त्वाम अहम, मैं आपका हूं. कोई एक बार कहता है कि भगवान कहता है, कोई एक बार कहता है कि मैं आपका हूं, सर्व भूते भ्यो सारे प्राणियों से अभ्यदान उसको देता हूं, इदम मम व्रतम, ये मेरा व्रत है, दिस इज माय वो. एक बार कोई कह दे मैं मेरा हूं, भगवान मेरा, देन आई विल प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम ऑल प्रॉब्लम्स, दिस इज माय वो. तो सारे ब्राह्मण बोला महाराज आपको कैसे दंड दें, तो बोला इसको छोड़ दो. तो ऐसे विभीषण को वहां से छुड़ाया. तो यहां भगवान विष्णु आके बोलते हैं ये इन्होंने गलती कर दी है, ये मेरे दरबार है, आपने ठीक किया इनको शराब दे दिया, बहुत अच्छा किया. अब तो ब्राह्मण भगवान को ऐसे देखने लगे, वो चार कुमार हैं. पर हमारे पिताजी ब्रह्मा कहा करते थे कि जाना आपके पास, हम तो ब्रह्म के आनंद में इतने थे, सारा दिन आंखें बंद करके ओम ओम कर रहे थे. लेकिन आज क्या हमारा भाग खुला है कि हम यहां आए हैं. और ये बहुत सुंदर तुलसी जो चंदन के साथ लेप किया हुआ आपके चरणों में लगी हुई है, इसकी जो मंद मंद सुगंध आ रही है, हम तो ब्रह्म को भूल गए. अब तो ब्रह्म आनंद हमको ऐसे लग रहा है जैसे एक कतरा हो और हम कहीं समुन्द्र के अंदर बैठे हुए हैं, इतना आनंद आ रहा है. बस भगवान आप इनको छोड़ देते, बोला इनको मत छोड़ो अभी, पता एक बार लक्ष्मी ने कहा था ये आपके जय विजय दोनों दरबान है ना, हम एक बार आ रहे थे हमको रोका भगवान का, पत्नी की वजह से इनको डांटेंगे तो लोग कहेंगे क्या कह रहा है अपने घर में। आज मौका आ गया है, ठीक है काम तो उन्होंने ठीक नहीं किया, दोनों खुश हो जाएंगे, इनको जाने दो यहाँ से। भगवान ने इतनी योजना, डबल योजना बनाई। भगवान एक वक्त में तीन चार काम कर लेते हैं, वन एक्शन हैज मैनी पर्पजेस। एक बार द्वारका में बैठे हैं, भगवान को विचार आया कि ये गरुड़ समझता है कि मेरे जैसा कोई तेज चलता नहीं, गरुड़ भी इसकी स्पीड बहुत तेज है। हनुमान जब छोटा बच्चा था ना तो भूख लगी तो सुबह सुबह सूरज उग रहा था, उसने बोला ये एप्पल है और एकदम ऐसे छलांग मारी, तो उस वक्त कहते हैं ये तो गरुड़ से भी तेज जा रहा है, तीन ही आदमी इतना तेज चल सकते हैं, या गरुड़ या वायुदेव, ये दूसरा तीसरा कौन है। और जाके वो सूरज को वो एप्पल समझ के खाने के, वो तो इतना तेज चलता है हनुमान जी, तो गरुड़ के समान चलता है। उसके बाद की कथा अभी नहीं करते। वो राहु खड़ा था, राहु ने देखा ये तो सूर्य को तो मैं भक्षण करता हूँ, ये दूसरा राहु कहाँ से आ गया। और दौड़ता हुआ राहु गया इंद्र के पास, इंद्र को कहा वो कोई और आया है सूर्य के पास खड़ा है, मेरे को आने नहीं देता है। इंद्र ऐरावत के ऊपर चढ़ के आया, इंद्र को आते हुए देखा तो सूर्य को छोड़ के हनुमान बोला चलो यही अच्छा फल है इसको खा लेते हैं। हनुमान इंद्र की तरह भागा तो इंद्र ने अपना वज्र का प्रहार किया, इस वज्र और वज्र लगा हनुमान को यहाँ ठोरी पे, तो उसका नाम हनुमान इसलिए हुआ। हनुमान मीन्स जिसकी ये लोअर जा थोड़ी सी टूट गई थी उस वज्र के कारण से। हनुमान मूर्छित होके नीचे गिर गया, उसके पिताजी पवन ने हवा बंद कर दी बहना, अब सबकी हवा बंद हो गई, सबका सांस उठा बंद होने लगा, सब बड़े परेशान हो गए क्या हो गया। तब ब्रह्मा जी ने कहा जाओ पहले वो इसके बेटे को ठीक करो तब ये हवा चलेगी। सब देवता नीचे आए, हनुमान को वरदान दिया सबने, हनुमान को वरदान दिया, इतना एक ने तो ऐसा वरदान दे दिया था, तो सूर्य ने वरदान दिया मेरा तेज रहेगा, ब्रह्मा ने वरदान दिया कि आपको तो ब्रह्मस्त्र कुछ नहीं करेगा, तो बहुत सारे वरदान हनुमान जी को दिए। तो बात कर रहे थे हनुमान बहुत तेज वेग से चलता है, लेकिन गरुड़ को क्या मन में आ गया कि मैं बहुत तेज चलता हूँ। और सुदर्शन चक्र कहता है मैं ही द्वारका की रक्षा करता हूँ, नहीं तो रक्षा हो नहीं सकती। और सत्यभामा भगवान की आठ रानियों में सबसे ज्यादा सुंदर थी, और अपने आप को बहुत सुंदर मानने के कारण भगवान का ये अपने आप को बहुत गौरवशाली मानती है सुंदर की। गर्ग संहिता में बहुत सत्यभामा का और राधा का वार्तालाप एक है 100 साल के बाद, बड़ा अच्छा है, आश्चर्य लगा। लेकिन जब राधा का गौरव देखा, उसने जो उसकी महानता देखी, तब सत्यभामा थोड़ी शांत हुई। तो भगवान ने कहा इन तीनों को थोड़ा, भगवान को अहंकार अच्छा नहीं लगता है, भगवान को क्या अच्छा नहीं लगता है, फॉल्स ईगो। लोग देखो लोभी कामी तामी तर गए हैं, बहुत सारे गिनका तर गई, कामी थी लोभी तर गए, लेकिन अहंकारी कभी नहीं तरा, अहंकारी आदमी कभी नहीं तर सकता है। तो भगवान ने कहा थोड़ा भी अहंकार भक्तों में आ जाए तो उसका अहंकार जरा, भगवान का अहंकार हरी भी है वो हरी, एक काम हरी का ये है कि भक्तों का अहंकार भी कम कर देता है। अब भगवान ने बैठे कहा कि तुम ऐसे करो गरुड़ जाओ मंदराचल पर्वत पे, हनुमान होगा उसको बोलो भगवान कृष्ण ने बुलाया। गरुड़ पहुंच गया कूद के, हनुमान बैठा था बोला आपको भगवान श्री कृष्ण ने बुलाया चलिए। गरुड़ के हनुमान जी के आप चलिए मैं थोड़ी देर में आता हूँ, बोला आप कब पहुंचेंगे, देर कूदते कूदते कम पहुंचेंगे यहां से, इधर से उधर कूदते जल्दी चलना है, यहाँ थोड़ी नजदीक है यहां से। बोला मैं आ जाऊंगा आप चलिए मैं आ रहा हूँ, बोला आप नहीं चलोगे तो मैं आपको जबरदस्ती उठा के चलूंगा। अब हनुमान कह रहा है भगवान का वाहन है मैं कैसे बैठूं, तो भगवान के चढ़ने की सवारी है मैं इसके, हनुमान ने कहा मुझे सवारी की जरूरत नहीं पड़ती है मैं ऐसे चल लेता हूँ। लेकिन उसने बोला नहीं मैं आप, हनुमान ने उठा के ऐसे गरुड़ को दे फेंका समुद्र में, हम गरुड़ के समुद्र में गए और हनुमान जी वहां से एक छलांग लगाई द्वारका के गेट पे, जैसे द्वारका के सीमा में सुदर्शन चक्र खड़ा था, अंदर मत जाओ, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने बुलाया है, यस कॉल्ड मी आई हैव टू गो एंड सर्व हिम, नहीं जाओ, चक्र को ऐसे लेके दांतों में दबा दिया। लैंड किया सीधा पैलेस में रुकमणी के, तो सत्य भामा को भगवान कह रहे थे, देखो मैंने हनुमान को बुलाया है, वो जब आएगा तो मेरे को राम रूप में देखना चाहेगा, तो मैं तो चलो राम बन जाता हूँ, लेकिन अब सीता है नहीं, मैं किसको बिठाऊँ, वो तो बहुत सुंदर थी। सत्य भामा ने कहा मैं हूँ ना, बैठ गई साइड में। हनुमान ने आके भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, सत्य भामा की तरफ देखा नहीं। तो भगवान ने पूछा, जरा हनुमान आज बोल नहीं रहे हो? तब सुदर्शन चक्रवर्ती बोला, ये आने नहीं दे रहा, इसको जरा दबा दिया। और पहले बोलते हुए बोला, आपको प्रणाम भगवान, बहुत सुंदर, आपको देख के मेरा कल्याण हो गया, लेकिन माता सीता कहाँ गई, किसको बिठा दिया? सत्यभामा उठ के चल गए। हनुमान जी से पूछा कि गरुड़ आपको लेने आया? बोला वो बहुत धीमे चलता है, पीछे होगा, अभी आता होगा। तब पंख भीले भीगे हुए पंखों से गरुड़ जी आया, और ये सुना गरुड़ जी ने कि बहुत चुप करके आके बैठा। तो तीन का एक समय में भगवान ने अहंकार को शांत कर दिया। भगवान को अहंकार पसंद नहीं होता है, कभी भी प्राउड नहीं होना चाहिए। प्राउड किस चीज का होना चाहिए? बड़ाई, लोगों को बहुत बड़ी बड़ाई होती है ना। एक महात्मा किसी गांव में गया, गांव वालों ने क्या किया, द पीपल ऑफ दैट विलेज, ऊपर जो जो बड़ा आदमी था ना, बोला भगवान महाराज आइए, ये आपके लिए आसन है, हमारे ये देख रहे ना सामने पूरे घरों की लाइन, ये विला सब ये हमारे हैं, अच्छा ये फैक्ट्री जो सामने देख रहे हैं ये भी हमारी है, अच्छा तो ये दुकानों की बाजार, दिस होल शॉप, रो ऑफ शॉप इज अवर्स। महाराज ने कहा इसको बहुत अहंकार हो गया है। महाराज ने वर्ल्ड मैप पढ़ा था, जो ग्लोब गोला, उस पर उठाया, बोला बोला सेठ जी जरा दिखाइए तो आपका देश यहाँ कहाँ है इसमें। अब उसके देश का कितना निशान होगा उस गोले के ऊपर, वर्ल्ड मैप में उसका जो कंट्री है उसका कितना निशान होगा, एक एक जस्ट लाइक एंट साइज का उसका कंट्री था। बोला इसमें तुम्हारा गांव कहाँ है? बोला नाम नहीं है। बोला तुम्हारी दुकान तो दिखाओ यहाँ। इतना बड़ी दुनिया है उसमें तुम्हारे को दुकान ही याद है? दुनिया कितनी बड़ी है कभी देखा है? तो बड़ाई करना ठीक नहीं है, बहुत निम्रता जीवन में अति आवश्यक है। साधु का जीवन निम्र होना चाहिए। तो महाप्रभु की ये शिक्षा हर समय याद रहनी चाहिए, तृणाद अपि सुनिश्चेन तरोरपि सहिष्णोन अमानीन मान देन कीर्तन्य सदा हरि। सदा हरि का कीर्तन कौन कर सकता है? तृणाद अपि सुनिश्चेन, तृण कहते हैं घास को, तिनका घास का है, ब्लेड ऑफ ग्रास, उससे भी ज्यादा, अपी का मतलब उससे भी ज्यादा क्या बनो, हम्बुल, निम्रता। क्यों भाई उसमें क्या खराबी है? बोला हवा में उड़ के आंख में जाए तो लोग को परेशान करता है। स्मॉल ब्लेड ऑफ ग्रास हवा में उड़ के आंख में पड़े तो बहुत बड़ा परेशान करता है, तो उससे भी ज्यादा निम्रता होनी चाहिए। तरोर अपी सही सुनो ना, तरोर वृक्ष, ट्री, मोर टॉलरेंट देन ए ट्री। वृक्ष गर्मी में सर्दी में बाहर ही खड़ा होता है, पत्थर मारता है उसको फल देता है। एक ही सच्ची घटना है, कहाँ की, पंजाब की, लाहौर में महाराज रंजीत सिंह, ही वॉज द किंग। और रंजीत के महाराज रंजीत सिंह जब राजा थे तब सिखिज्म बहुत ज्यादा पंजाब के अंदर फैला हुआ था। तो महाराज रंजीत सिंह अपने बैठे थे बाहर दीवान में आराम से, तो एक बच्चा था, वो पेड़ था आम का, उसको पत्थर मारा, पत्थर पेड़ को नहीं लगा, महाराज को लगा आकर। अब राजा को पत्थर लगे समझ तो कैसे होगा, पकड़ के लाए लड़के को, पकड़ के राजा के सामने खड़ा कर दिया। अभी तो राजा हाथ ऐसे लगा, सी वाज डूइंग दिस, हु इज थ्रोन दिस स्टोन। बच्चे से राजा ने पूछा पत्थर क्यों मारा? बेचारा डर रहा था, बोला पेड़ में मारा था, इन दिस ट्री। बोला पत्थर मारते हो पेड़ को, मैं क्या मिलता है? बोला आम मिलता है। एंड किंग वाज सो इंटेलिजेंट, सेड पेड़ को पत्थर मारने से आम मिलता है, मैं राजा हूं, मुझे पत्थर मारा है तो कुछ ज्यादा ही देना चाहिए ना। जब जड़ पेड़ है उसको पत्थर कोई मारता है तो भी फल देता है, तो मुझे तो सहनशीलता होनी चाहिए, मुझे तो इसको ऐसा फल देना चाहिए कि जीवन में कभी फिर मांगना ना पड़े। उस बच्चे को पढ़ा के अपना मंत्री बना दिया, उसको बहुत अच्छा स्थान दे दिया। तो सहनशीलता पेड़ से सीखी एक महाराज ने बहुत सिंपली जीवन में, कि क्या क्या करता है पेड़, जो मारता है उसको भी फल देता है, जो काटता है उसको लकड़ी देता है, उसके घर में भी उसकी सर्दी को भगाने के लिए गर्मी और रोटी पकाने के लिए लकड़ी काटने वाले को भी देता है। तो सहनशीलता कितनी है पेड़ में, उससे ज्यादा सहनशीलता साधु में होनी चाहिए। साधु की सहनशीलता की कल मैंने कही एक कथा बताई, सो दे आर स्टिल थैंकफुल इवन इफ दे आर पुट इन अ डिफिकल्टी, दे आर स्टिल थैंकफुल। हरे कृष्णा, एक साधु नाव में जा रहा था, कहाँ, इन ए बोट ही वॉज क्रॉसिंग सम रिवर। बाय द वे उस टाइम में बोट के अंदर सब बदमाश बैठे थे, ऑल वेरी क्रूअल पर्सन वर सिटिंग अराउंड हिम इन दैट बोट। ये साधु था ना, घड़ी थी कुछ था ऐसे, उसको 12 बजने का टाइम समझा कि दोपहर हो रही है, गायत्री करनी है। उसने पूछा, भैया टाइम कितना हुआ है? तो एक ऐसे देखता है, टकला है टकला। मैं ऐसे बड़ा एक महाराज, महाराज का माथा घुमा ऐसे और हाथ जोड़ के, अरे मेरे भगवान कितना आपने कृपा की, एक घंटा पहले पूछा होता तो ये 12 मारता तो मेरा क्या होता। एक घंटा अगर पहले पूछा होता तो खोपड़ी खत्म हो गई। आप बड़े दयालु हो भगवान। भाव ये है कि उसने झगड़ा नहीं किया, टॉलरेंस किया। जिंदगी में कभी चोट भी लगती है, जीवन में चोट भी लगती है, लेकिन उसको टॉलरेंस करने का पावर बढ़ना चाहिए जीवन में। ये टॉलरेंस आएगा कहां से? ये आप सत्संग में आ रहे हैं, जो आप हरे कृष्णा जप रहे हैं, भगवद गीता भागवत पढ़ रहे हैं, इसका प्रत्यक्ष रूप से द रिजल्ट ऑफ दिस योर डिवोशनल सर्विस इज नंबर वन इन दिस लाइफ, योर टॉलरेंस पावर इंक्रीजेस। दिस इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ योर डिवोशनल सर्विस। आपके जीवन में सहन शक्ति बढ़ेगी, ये असल में रिजल्ट ये है आपकी भक्ति की। कोई कहे कि भक्ति करने से हमारे को क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा वो तो बाद की बात है, लेकिन जीवन में सहनशीलता आ जाएगी तो बहुत बड़ा धन है ये। यू विल नॉट बी डिस्टर्ब अमंग एमिड्स द ऑल डिफिकल्टीज एंड ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन, यू विल स्टैंड वेरी फर्म लाइक चट्टान, हिमालय की तरह, स्थावराणाम हिमालय। ये पता है किसके बाद है? 10वें अध्याय में ये श्लोक में जो ये शब्द है स्थावराणाम हिमालय, इससे पहले पता है क्या है? यज्ञानाम जप यज्ञ स्वामी स्थावराणाम हिमालय, देख लेना 10वें अध्याय में। एक ये दूसरा एक के पास गया है, अगर तुम जप करोगे तो तुम्हारा जीवन हिमालय जैसा स्थिर हो जाएगा, तेरे को कोई हिला नहीं सकेगा। देख लेना 10वें अध्याय में ऐसे है कि नहीं। देखो भाई प्रभु हमारे देख रहे हैं, परमेश्वर जी, परमेश्वर जी ये हमारे एग्जामिनर है, अभी बताएंगे ठीक बोला कि नहीं बोला। ये जरूर होना चाहिए, कोई ऑलवेज हैव समबडी ओवर यू, देन यू विल बी इन ए राइट फ्रेम ऑफ कॉन्शियसनेस, राइट फ्रेम ऑफ माइंड। इसलिए भगवान सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, किसी सब सीधे हो। 10वें का कौन सा है? यज्ञानाम जप यज्ञस्मि स्थावराणाम हिमालय अश्वतः सर्ववृक्षाणाम देवऋषिणाम नारद है कि नहीं है? हरे कृष्ण, होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हे, मिला कि नहीं मिला? हरे 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 राम हरे, मिला कि नहीं मिला? 25 बाबा 25 देखो है ना, इज लाइक दैट। वाय भगवान ने क्यों कहा यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि फिर स्थावर नाम हिमालय हिमालय? अगर हरे कृष्णा जप करोगे तो जीवन तुम्हारा हिमालय की तरह, इफ रियली यू चैंट हरे कृष्णा देन यू विल बी लाइक एज स्ट्रांग एंड एज अनशेकेबल एज हिमालय। आपकी जीवन में कितनी आंधी आए तूफान आए, हिमालय हिलने वाला नहीं है। हम अपने जगह से हिलेंगे नहीं अगर हम भगवान का सहारा लेके पकड़ के खड़े हो जाएंगे। दिस इज अ न्यू रियलाइजेशन आई एम जस्ट हैविंग, दो श्लोक में ये शब्द एक दूसरे के साथ क्यों भगवान ने कहे, ये करने से ये आपको प्राप्त होगा जीवन में। तो सबसे बड़ा लाभ है भगवान की भक्ति करने का कि जीवन में सहनशीलता आएगी। क्यों आएगी? भगवान है ना हमारे साथ, वो कहाँ हमको तकलीफ दे उठाने देंगे। ही विल नॉट, भगवान कभी भी हमको कष्ट नहीं देंगे। अगर उन्होंने ये थोड़ी सी तकलीफ भेजी है तो हमारे भले के लिए होगी, मस्ट बी फॉर आवर बेनिफिट, कोई ना कोई फायदा होगा इसमें। दो मित्र थे, टू फ्रेंड्स वर देयर, बहुत घनिष्ठ मित्र थे, थक गए थे जंगल में। एक मित्र दूसरे के गोद में गर्दन रख के सोया हुआ था, नींद आ गई थी, वह स्लीपिंग। सांप आया सामने, बोला ये तुम्हारे मित्र को काटूंगा। बोला क्यों? बोला इसने मेरे को मारा है। बोला तुमको मारा का है, तुम तो सामने खड़ा है। बोला मेरा खून निकाला है, चोट लगाई है। बोला फिर तुम इसका खून निकालने से तुम्हारा काम हो जाएगा? बोला हाँ, इसका खून निकालना है। तो दोस्त ने अपना चाकू निकाला और सोए हुए दोस्त के हाथ को चाकू से काटा, खून निकला, खून सांप को दिया, सांप चला गया। सोए हुए दोस्त ने आंख खोली, देखा चाकू है लेकिन दोस्त के हाथ में, आंख बंद करके सो गया। थोड़ी देर के बाद उठा तो दोस्त ने बोला तुम्हें डर नहीं लगा मैंने चाकू से तुम्हें काटा? बोला पहले मेरे को डर लगा, मैं आंख खोली देखा क्या चाकू मेरे दोस्त के हाथ में है, तो मेरा हित होगा तभी काट रहा है कुछ, ये काट रहा है तो मेरा हित होगा था ना, इट मस्ट बी फॉर सम बेनिफिट मार फॉर मी देयर फॉर इज कटिंग। तो मैं आंखें बंद करके सो गया बेफिक्र होकर, क्योंकि मेरा फायदा ही है। तब उसने बताया तुम्हें सांप काटने आया था तो इसलिए मैंने तुम्हारा थोड़ा खून दे दिया। तो व्हाट इट मींस, भगवान कोई थोड़ा कष्ट भेजता है तो ऐसे देखना चाहिए कि चाकू किसके हाथ में, हमारे मित्र के हाथ में है ना, ये थोड़ी हमारे को काटेगा, ये तो हमारा हित ही कुछ करता होगा, कोई हमारा हित होगा इसलिए ये कष्ट दे रहा है। तो इसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी हालत में भी चिंता नहीं करनी चाहिए। इस दुनिया में कष्ट जरूर आते हैं लेकिन भगवान के भक्त कष्ट आने से भी दुखी नहीं होते, वो शेक नहीं हो सकते कैसी भी स्थिति। गुणान अपि न विचालयते, ये भगवद गीता का दूसरा, गुणा अपि न विचालयते, कैसी भी विषम स्थिति हो, कितनी भी परेशानी हो, लेकिन वो अपनी जगह से हिलेंगे नहीं कि भगवान है, उसने कहा है कि रक्षा करूंगा तो जरूर करेंगे, एंड ही विल बी डेफिनेटली ही विल प्रोटेक्ट अस। तो ये विश्वास जीवन में कब आता है? जब हम भगवान के भक्तों के संग में बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं तो हमारा टॉलरेंस पावर बढ़ता है। तृणादपि सुनी चे निम्रता आती है, टॉलरेंस पावर बढ़ता है, हम्बलनेस एंड टॉलरेंस हमारा बढ़ता है जीवन में। फिर अमानीन, ये अमानीन आप भगवद गीता में उठा के देखिए, ज्ञान का पहला लक्षण है अमानीन, जहां भगवान ज्ञान की बात करते हैं पहले अमानी त्वम, अमानी त्वम अदम भी त्वम, पहला शब्द है अमानी त्वम, ज्ञान, इसको ज्ञान बोला गया है 13वें अध्याय में, 13th चैप्टर का ज्ञान के प्रसंग का पहला शब्द है अमानी त्वम, अमानी त्वम। ये महाप्रभु ने जब कहा है तो शास्त्र से कहा है, शास्त्र का प्रमाण भगवान स्वयं मानते हैं, अपनी कोई बात नहीं करते हैं। पुरानी एक कथा है, आपने कभी सुनी है, भगवान श्री कृष्ण का एक लोग प्रेम से नाम कहते हैं क्या, माखन चोर, लेकिन लोग कहते हैं, लेकिन लोगों के घर में कभी माखन चुराने नहीं आया, ये तो गोपियों के घर में माखन चुराता जो प्रेम से उनके लिए बनाते थे, आपके घर में है कहाँ माखन जो चुराने आएगा ये अमूल डेयरी का माखन थोड़ी खाता था तो बात क्या कर रहे हैं कि वे शास्त्र के प्रमाण को भगवान भी मानता है। ये महाप्रभु ने अमानी तो हम लिखा है तो भगवद गीता का पहला ज्ञान का लक्षण है, और ये ज्ञान के लक्षण पहले में, इसी लक्षण के नीचे पता है क्या आता है ज्ञान में, अभिविचारेण भक्ति योगेन, इसी श्लोकों की श्रृंखला में अभिविचारेण भक्ति योगेन है। ज्ञान कौन सा जो आपको भक्ति में ले जाए, और उसके लिए अमानित्व होना बहुत जरूरी है, उसकी शुरुआत अमानित्व से होगी और अभिविचारी भक्ति से वो परिपूर्णता होगी। ये खोल के देख लेना, ये श्लोक साथ में मेरे ख्याल में 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे कुछ लाइन में है श्लोक, 8 से 13 तक ऐसे कुछ है, देख लेना कैसे कहाँ है, 13 में है शायद, 13 तक। अच्छा बात क्या कर रहा था, गोपियों ने एक बार एक षड्यंत्र किया, षड्यंत्र किसको बोलते हैं, छह प्रकार से किसी को फंसाने का तरीका बनाना। गोपियों ने कहा जब जब यशोदा के पास जाते हैं इसको पकड़ के मक्खन चुराते तो ये कोई ना कोई नमूना करके बच जाता है, आज इसको पकड़ना चाहिए। क्या किया उन्होंने, उन्होंने माखन बहुत सुंदर तैयार किया, माखन छीके में टांगा ऊपर हैंग कर दिया, हाँ, और फिर गई पानी भरने, कृष्ण को देखा, बोला इधर आओ, बोला क्या है, बोला ये मटकी सर के ऊपर रखो, बोला कि तेरे बाप का नौकर हूँ मैं तुम्हारे को क्यों उठवाऊं, बोला मेरे घर में माखन बहुत अच्छा है खाने आना, बोला ठीक है वो तो खाने आऊँगा, भगवान उधर खड़े हैं, ये मटकी लेके आ गई तो बोला ये उतरवाओ, बोला हाँ लाओ उतारता हूँ, बोला तुम रख ऊपर क्यों रखा, बोला मैं भक्तों का भार उतारता हूँ, भार थोड़ी किसी के सर के ऊपर रखने के लिए, तेरा भार उतार तो लूंगा, तेरे ऊपर सर के ऊपर भार मैं रखूँ ये थोड़ी काम मेरा है, ये तो भक्तों का भार उतारता हूँ, ये करके माखन मेरे घर में आना खा के जाना। अब क्या किया गोपियों ने, गोपियों ने घंट जो घंटियां है ना बेल्स बांध दिए, कहाँ बेल बांध दिए, दरवाजे पे खिड़की पे कुंखल में छीके में बेल बंधे हुए। कृष्ण जाके देखा रे गोपियां बड़ी होशियार हो गई, हमको पकड़ना चाहती हैं, बेल बजेंगे। भगवान त्रिलोकीनाथ ऐसे अपनी ऐश्वर्य शक्ति को बोला कोई चीज अपनी जगह से नहीं हिले, पत्ता भी मेरे आगे से नहीं हिलता है, तो ये घंटी कैसे बजेगी, नहीं बजनी चाहिए। भगवान को कहते हैं संकल्प, भगवान संकल्प करता है तो सृष्टि हो जाती है, पहले जमाने में संकल्प से सृष्टि हुआ करती थी। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे बेटे हो जाए और चार कुमार सामने खड़े हो गए, कोई शादी नहीं, कोई रिसेप्शन नहीं, कोई खर्चा नहीं, बच्चे सामने खड़े हो गए, ये संकल्प की शक्ति हुआ करती थी पहले। तो अब सब कूद के अंदर चले गए, अंदर गए चल उखल उठाया, घंटी नहीं बजी, छीके की घंटी नहीं बजी, भगवान ने माखन उतारा, पहले मित्रों को खिलाया खाओ, कोई खाते ऐसे मुंह कर रहा है, बंदरों को दिया, बंदर ऐसे कर रहा है, तो देखो ये माखन अच्छा है, ऐसे बुलाया था अच्छा, भगवान ने ऐसे मुंह चला चखने के लिए मुंह डाला, सब घंटियां बज गई, भगवान ने तुमको बोला मत बजना, ये क्या कर रही हो। अब घंटियां कहती है आपने लिखा है शास्त्र में भगवान को भोग लगे तो घंटी बजे, आपने तो नेम ये बनाया है ना, अभी कथा शुरू की यहाँ भोग लग रहा था घंटी बज रही थी ना, आपने कहा है जब भोग लगेगा भगवान का तो घंटी बजेगी, आपका अपना नेम है शास्त्र का, आप किसकी बात मानू, शास्त्र की बात को प्रमाण है, शास्त्रम प्रमाणम कुरुते, ये सत्रवां अध्याय शुरू होता है, सोलहवें अध्याय का आखिरी श्लोक है, शास्त्र के प्रमाण से जो नहीं चलता है उनको न सिद्धि मिलती है, न गति मिलती है, और न सदगति मिलती है, न सिद्धि मिलती है, और न कर्म में कुछ भला होता है। आखिरी श्लोक देख लो, सोलहवें अध्याय का, सोलहवें का आखिरी, शास्त्र विधि उदसर्जया यजन्ते काम कारतः, अपनी इच्छा से काम करते हैं, शास्त्र की बात नहीं मन करते हैं, उनको तीन चीजें नहीं मिलती हैं, न सिद्धिम न पराम गतिम, सिद्धि भी नहीं मिलती है, परम गति भी नहीं मिलती है, और कर्म का फल भी नहीं मिलता है, तीन चीजें नहीं मिलती है। हरे कृष्णा, दो मिनट और कथा या समाप्त करने की प्रयास करेंगे, पुनः एक बजने वाला है, मिल गया बेटी, क्या लिखा है, ये शास्त्र विधिम उत्सर्जया यजन्ते काम कारतः, फिर क्या है, काया काय, इससे पहले, इससे एक एक पहले वाला, बिफोर वन बिफोर दिस, विधिम उत्सर्जया, शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से काम करते हैं उसको सिद्धि भी नहीं मिलती है, न सुख मिलता है और न परम गति मिलती है। अब ये शास्त्र की बात नहीं मानेगा तो न सुख मिलेगा, न सिद्धि मिलेगी, न परम गति मिलेगी, इसलिए शास्त्र की बात माननी चाहिए। भगवान राम जब अर्पण कर रहे थे तृपण अपने पिता दशरथ को, तो जब पंडित जी ने कहा इसके द्रव ग्रास होता है ना, कुश ग्रास, पुट दी पिंड, जो आटा है इसके ऊपर रखो, तब दशरथ जी का हाथ ऐसे बाहर निकल आया। अब राम रखना जाए तो दशरथ का हाथ बाहर आया, तो भगवान राम हाथ के ऊपर पिंड रख रहे थे, पंडित जी ने बोला महाराज ऐसे मत करो, कुश ग्रास पे रखो। बोलो क्यों, पिताजी का हाथ निकला, बोला सबके बाप का हाथ तो नहीं निकलेगा ना, सबके बाप का नहीं निकलेगा तो लोग कहेंगे पंडित जी हाथ निकालो तब पिंड रखे, तो हमारी तो नौकरी गई ना। तो हमारा काम तो चलेगा नहीं, जो शास्त्र में विधि है वैसे रखो, रख लो पिंड के ऊपर, आपके पिताजी के हाथ को नमस्कार करो लेकिन पिंड यहां रखो। तो ये शास्त्र विधि का प्रमाण होता है, तो शास्त्र की विधि के अनुसार काम करना चाहिए। तो काम शास्त्र की विधि में अमानी त्वम, अपने मान के लिए कभी भी लालायत नहीं रोना चाहिए। इस दुनिया में हम सब चाहते हैं हमारा सम्मान हो, और महाप्रभु कहते हैं अमानीत्वम, अमानीत्वम, अमानीत्वम का क्या लिखा है, व्हाट इज द ट्रांसलेशन फॉर अमानीत्वम, नॉट एक्सपेक्टिंग एनी ऑनर बट गिविंग रेस्पेक्ट टू ऑल लिविंग एंटिटीज। मान देना, अमानी ना, मान दे, सबका सम्मान करो, सबका सम्मान किस किस का करो, इवन लिविंग एंटिटी में चुंटी भी है, सिंपल एंट है, उसका भी सम्मान करो। ये प्रभुपाद की शिक्षा से एक प्रभुपाद का ऑफिशियल इनिशिएटेड शिष्य नहीं है, लेकिन प्रभुपाद ने 4 साल उसको ट्रेनिंग दी थी। इस वक्त वर्ल्ड में बहुत बड़ी ट्रेनिंग देता है मैनेजमेंट की और लीडरशिप की, और कंपनीज को जो है वो काउंसलिंग करता है, पीटर ब्रोविश, हाँ क्या पीटर नाम सुना है, उसकी किताब देखे हैं कुछ आपने, वो अपने जीवन की घटना बताता है कि प्रभुपाद के संग में आने से हमें अमानिता के साथ मान देने हमने सीखा है। वो सुन लीजिए, वो कहते हैं, कहते मैं टेनिस का प्लेयर था और टेनिस का कोच था, टेनिस खेलने जा रहा था, लास्ट पॉइंट थी, और मैं जहाँ से मेरे को करना था क्या कहते हैं जो फर्स्ट बॉल फेंकता है, सर्विस जहाँ से मुझे करनी थी, अचानक मेरी नज़र नीचे गई, मैंने एक एंट को देखा, अगर मैं पाँव उस एंट के ऊपर रख के सर्विस करता तो मैं जीत जाता, लेकिन मैं कहा कि इसकी जान लेके मैं जीतूँ, इससे थोड़ा पाँव हटा के रखता हूँ और सर्विस मेरी ठीक नहीं गई, मैं हार गया, लेकिन मैं दिल में जीत गया कि मैंने एक जीव को मारने से बचाया। ये अपने जीवन की घटना बताता, इसमें बोलते हैं अमानित्वम ये है, तो अदम मान देना ये है कि उस छोटे चुंटी की जीवन बचाने के लिए कोई बात नहीं, आज हार गया कल जीत लूँ गेम को, लेकिन इसको न मारना, देख के इसको मारना, ये है मान देना। दूसरे को मान देना चाहिए, अपना मान खत्म कर दिया उसने, अपना मान क्या, जीतता तो मान मिलता, मालाएं मिलती ना, अमानी ना, अमानी तुम, मान नहीं चाहिए, मान देना, उस चुंटी को मान दे दिया। तो अपने जीवन की वो घटना बता रहा था कि दिस इज व्हाट बाय टीचिंग, प्रभुपाद टीचिंग या भक्ति करने से जीवन में ये सब गुण आते हैं। तो हमारे अंदर ये गुण टॉलरेंस का आएगा तो घरों के अंदर भी शांति होगी, झगड़े समाप्त होने जाएंगे, कोई बात कहेगा तो सुन लेंगे। कल ही कहीं बात कर रहे थे परसों अलकरमा में, घर में झगड़े जरूर होते हैं, किसी स्त्री पुरुष ने कहा आपने कभी घर में झगड़ा किया है, बोला झगड़ा हुआ नहीं, बोला ऐसे कैसे हो सकता है, जोर से बोलते नहीं, वो बोलते हैं ना, क्रोध होता है लेकिन झगड़ा, बोला झगड़ा क्यों नहीं होता है, बोला जब ये जोर से बोलता है तब हम चुप हो जाते हैं, जब हम जोर से बोलते हैं तब ये चुप हो जाते हैं, झगड़ा होता ही नहीं। ये ट्रैफिक का रूल है, हाईवे के ऊपर ड्राइविंग करनी होती है रात को तो कहते हैं आमने सामने गाड़ी आती है तो दोनों की हाई लाइट होगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, एक डिम लाइट करता है तो दूसरा साइड से निकल जाता है, तो जब दूसरे की लाइट हाई हो जोर से बोले तो अपनी डिम लाइट करके चुप करके बैठना चाहिए, थोड़ी देर में थक जाएगा, गुस्सा हमेशा थोड़ी रहेगा, थोड़ी देर के बाद वही कहेगा मेरे को माफ करना, बोला क्या क्या हुआ था, वो बोले इसको पता भी नहीं है, अरे राम राम, क्या फर्क पड़ेगा।